તારીખ 28/5/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 126 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન.
अंग्रेजी साहित्य में जैसा शेक्सपियर का नाम है वैसा ही गोवर्धन राम का नाम है. इनका कोई कठिन सुखराम सूर्य बाकी सारा फैमिली में सब विद्वान ही विद्वान लोग थे और उनकी विचारधारा में कुछ अच्छी योग्यता देख करके गोपाल देव ने जो लंबाया इनके साथ पत्र व्यवहार है माने का उचित समझे कुछ योग्यता अच्छी दिखती है. आपके दर्शन का लाभ लिए लगभग एक मास से कुछ अधिक समय हुआ बम्बई में. भवानी ऐसे दिख रहे हैं बम्बई छोड़े एक वर्ष हुआ 15 दिन में. बम्बई का एक वर्ष का निवास उपाधि ग्रस्त रहा व्यवसाय समावित समाधि रूप तो एक आपका समागम था मुंबई में. उपाधि में कोई समाधि रूप तो आपका समागम था सत्संग था उसका यथेष्ट लाभ प्राप्त न हुआ जितना चाहिए उतना लाभ नहीं. ज्ञानियों द्वारा कल्पित सचमुच यह कलिकाल ही है. ज्ञानियों ने एक जो कलिकाल बोला है वो सचमुच ही कलिकाल दिखता है. जनसमुदाय की वृत्तियां विषय कषाय आदि से विषमता को प्राप्त हुई है. जनसमुदाय में बहुभाग विषय कषाय में डूबे हुए हैं. इसकी बलवत्तरता प्रत्यक्ष है समझाने की जरूरत नहीं है. बलवत्तरता विषय के साथ जो बलवत्तरता है वो तो प्रत्यक्ष दिखने में आई रही है. राजसी वृत्ति का अनुकरण उसे प्रिय हुआ है ये वेदांत की परिभाषा है. रजोगुण सात्विक गुण रजोगुण और तमोगुण प्रकृति का वो तीन वर्ग करते हैं. जो क्रोध यानी तीव्र कषाय की जो प्रवृत्ति होती है उसको तमोगुण कहते हैं और खास करके अनेक विध भोग उपभोग में पढ़ने के लिए इसके पीछे दौड़ लगाने वाली जो वृत्ति है वो राजसी प्रकृति है. तो जो अनेक प्रकार के अपने अनुकूलताओं को आयोजन करता रहता है और जो आत्मकल्याण और धर्म के विषय में जो लोग लगते हैं वो सात्विक प्रकृति के लोग मानते हैं. ऐसे तीन प्रकार के वो वैष्णव संप्रदाय वेदांत संप्रदाय में तीन वर्ग के लोग को समझते हैं. तो ये कैसा है आदमी क्योंकि तमोगुणी है मैंने बहुत क्रोधित होगा बहुत हल्के परिणाम वाले होगा बहुत तीव्र कषाय वाला हर बात में लेकर इतनी बात और कोई बहुत धमाल करता है ऐसा हो ये वो ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए वो राजसी प्रकृति वाला माना जाता है. तो संसार में राजसी प्रकृति वाले बहुत हैं. सात्विक प्रकृति वाले इस जमाने में बहुत कम हो. राजसी प्रकृति अनुकरण राजसी वृत्ति का अनुकरण उसे प्रिय हुआ है उसे मैंने जन समुदाय को. तात्पर्य यह है कि विवेकियों की और यथायोग्य उपशम पात्रों की छाया भी नहीं मिलती. पात्र तो नहीं मिलते लेकिन उसकी छाया भी नहीं मिलती.
1946
हुई 1946 में 2050 104 साल चल रही तात्पर्य यह है कि विवेकियों के और यथायोग सूक्ष्म पात्रों की छाया भी नहीं मिलती। ऐसे विषम काल में जन्मा हुआ यह देहधारी आत्मा, अपनी बात करते हैं, ऐसे विषम काल में जन्मा हुआ यह देहधारी आत्मा अनादि काल के परिभ्रमण की थकान से विश्रांति लेने के लिए आया, प्रत्युत अविश्रांति पाकर फंस गया है। जन्म तो लिया है ऐसे विषम काल में, आया है परिभ्रमण की थकान के हिसाब से विश्रांति लेने के लिए, लेकिन उल्टा फंस गया है। कारोबार में शुरू से तथा उनको नाराजगी हो गई है, मानसिक चिंता कहीं भी कहीं नहीं जा सकती। मानसिक जो चिंता है वो कहने का ठिकाना भी आजकल नहीं है। कहने योग्य पात्रों की भी कमी है कि किससे बात करें। ऐसी स्थिति में अब क्या करना है। यद्यपि यथायोग्य उत्सम भाव को प्राप्त आत्मा संसार और मोक्ष में समृद्धि वाला होता है, इसलिए अप्रतिबद्धता से विचर सकते हैं। क्या है, जिसको दृढ़ दृष्टि हुई है उसको तो संसार और मोक्ष दोनों में समृद्धि है। क्या है? एक जगह नहीं, और बात तो छोड़ दो, ये एकदम लास्ट बात कर दी है दृढ़ दृष्टि की। 23 के साथ जो नियम सार में आते हैं कि हमारे तो संसार और मोक्ष दोनों समान है। क्यों दोनों समान है, तो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत परिणाम है, प्रतिपक्ष वाले परिणाम है। तो जैसे पुण्य और पाप को एक जाति में ले जाते हैं कसाई के अपेक्षा से, क्योंकि दोनों कसाई हैं, इसलिए ऐसे ये दोनों परिणाम है, इसलिए परिणाम की जाति और मेरी जाति अलग है, क्योंकि मैं द्रव्य हूं, मैं परिणाम नहीं, मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, एक समय का परिणाम मैं नहीं। तो एक समय के परिणाम से चाहे संसार हो चाहे मोक्ष हो, मुझे क्या लेना देना। सुगानी जी कहते हैं द्रव्य दर्शन प्रकाश कि चाहे निबोध हो अवस्था में, चाहे अवस्था में सिद्ध पद हो, मेरे कोई हानि वृद्धि नहीं होती, लाभ नुकसान मुझे नहीं होता है। द्रव्य दृष्टि का विषय है, द्रव्य दृष्टि माने सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की ये दृष्टि है जो एक रूप त्रिकाल एक रूप अपने स्वरूप में अपना अस्तित्व जिसने ग्रहण कर लिया उसको पर्याय मात्र पर हो जाता है। जिस पर्याय में एकत्व पाकर के जीव अनादि से दुखी है उसमें अपना तो छूट जाता है। ऐसी दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसी दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कहते हैं, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। वो बात 23 साल के अंदर लोग कर रहे हैं। 21 इसको यथायोग्य उपशम भाव कहा है। क्या ऐसी दृष्टि से जो पर्याय की फेरफार की वृत्ति उपशांत होती है उसी को ही यथा योग्य उपशम भाव ऐसा कहा है। यथा योग्य उपशम भाव ऐसा नाम दिया है। संयोग अनुकूल प्रतिकूल है उसको बदलना वो तो सवाल ही नहीं है क्योंकि वह अपना अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक समय के पर्याय में भी अपना अस्तित्व नहीं होने से शुद्ध हो या अशुद्ध वो बात की बात है, पीछे की बात है। अपना अस्तित्व उसमें नहीं होने से हम उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकते।
शुद्ध माने अस्तित्व
दृष्टि के हिसाब से तो नहीं, ज्ञान के हिसाब से है। तुम देखो ये एक मुमुक्षुओं के लिए खास करके समस्या है। आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नई चीज है लेकिन हमारे जो द्रव्यान योग के अभ्यास करने वाले विद्वान लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक समस्या है। इस तरह कि जो संतान है दृष्टि है वो तो आत्मदृष्टि उसी को कहते हैं कि जो त्रिकाली ध्रुव सामान्य स्वभाव में ही अपना अस्तित्व को समाप्त करके ग्रहण करती है, वहीं अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्योंकि वो गुण को ही पकड़ती है। तो अस्तित्व गुण है वो गुण में रहा है, अस्तित्व गुण की पर्याय जो है उसको भी गुण में नहीं लेते क्योंकि पर्याय विनाशिक है, अवलंबन के योग्य नहीं है। दृष्टि का एक ही कार्य है अभेद हो जाना भाव से या उसको अवलंबन में ले लेना, आश्रय करना मुख्य तौर से उसी का, इसका उतना ही कार्य है। तो श्रद्धा उतना ही कार्य करती है कि जो परमात्मा तत्व है, आत्मा का परम स्वरूप है, परमात्मा तत्व जिसको बोलते हैं, वो अपने परमेश्वर को ही पूजती है अपने आप को भूल करके। खुद ही पर्याय है अपने आप को भूल करके। जब वो अपने आप को भूलती है तो फिर बगल वाले किसी पर्याय को संभालती होगी कि सवाल ही पैदा नहीं होता दूसरे को, तो संभालने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि संभाले उसको। तो उनको अपना परमेश्वर मिल गया, उनको सर्वस्व मिल गया। तो इसको न संसार की चिंता है न मोक्ष की भी है, दोनों पर्याय है, किसी को वो संभालने के लिए तैयार नहीं है। संभालने की बात तो खैर रहने दो, अब तो देखती ही नहीं है, उतनी अंधी है, खुद को ही नहीं देखती है और तो दूसरे पर्याय को भी नहीं देखती है। नहीं देखती है इसका मतलब वो है नहीं है, उसका भी उसको पता नहीं है वो है कि नहीं है। ऐसी दृष्टि को सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि कही जाती है। सम्यक दर्शन के विषय में प्राय जैन समाज अनभिज्ञ है, अनजाने हैं। ऐसे दृष्टि को ही सम्यक दर्शन कहते हैं और वो विषय गुरुदेव बहुत बहुत कम मात्रा में आगे पीछे कुछ बात रख करके उसमें छिपा करके बताते थे कभी कभी। गुजराती भाषा में एम कहता था ये कि मैं ये मिटाली ने बात करता था, ये भी बात में बात करिए तेरे बीजू मिटाली देता था, मिटाली ने बात बोलता था, सीधी नेकेड बात नहीं करता, लग्न सत्य नहीं कहता मैं। अब क्या हुआ, जो सुगानी जी का जन्म हुआ इस लाइन में, तब उनकी जो धारा थी वो दृष्टि प्रधान धारा थी, परिणमन की धारा ही उनकी वो थी। तो उनकी चर्चा में वही बात बहुत आई, उन्होंने बिल्कुल खोल करके वो बात कही। दृष्टि ले लो तो फिर इस पर से हमने एक संकलन उनके पत्रों का और चर्चा का जब किया तो उसमें ये बात बहुत खुल करके आई, उतनी खुल करके आई कि हमारे गुरुदेव के जो मुख्य मुख्य विद्वान थे वो विचलित हो गए। कि ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ऐसे नहीं कहते हैं, हमारे शास्त्र ऐसे नहीं कहते, इसलिए ये बात सही नहीं लगती। तो गुरुदेव ने कहा कि ये परम सत्य है, हमने ये बात कही है, लेकिन आगे पीछे उसमें रख करके बिगाड़ करके उसमें छिपा करके रख दिया, और हमने तो सबूत भी दिया है। इसी ग्रंथ में गुरुदेव के एक आर्टिकल दिया है दृढ़दृष्टि विषय, तो आत्मधर्म के पहले साल में 11वां अंक निकला, 11वां 12वां दोनों जॉइंट निकले थे, उसमें ऐसे एक आर्टिकल दे दिया था। उसमें फिर जो वो हमने सुगेंद्र जी को पढ़ाया भी था क्या पढ़िए, तो हम पढ़ते रहे, और पढ़ने के बाद 5 मिनट में पढ़ लिया, एक ही पेज था आत्मधर्म का। पढ़ते ही वैसे बोले कि ठीक है, यही चर्चा तो अपन कर ही रहे हैं, ऐसे ही बोले कि यही चर्चा तो अपनी चल रही है जो गुरुदेव ने इतने साल पहले कही, वो बात तो अभी अपन चला ही रहे हैं, वही बात चर्चा में। तो वो बात हमने सबूत के लिए दिया, क्यों, लोग तो मानने को तैयार नहीं होंगे, वो हमारा अंदाज था, तो लोग मानेंगे नहीं, हमारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को, या धक्का देंगे या निषेध करेंगे, और विरोध बड़ा, बहुत कड़ा विरोध हुआ। दृढ़दृष्टि प्रकाश का सोनगढ़ में इतना कड़ा विरोध हुआ हमारे विद्वानों से, कि उन्होंने ऐसी बात रखी कि इस ग्रंथ को प्रकाशित मत किया जाए। तो जो हमारे हाथ में उसका संकलन था, हमको तो डाउट था पूरा, समाज की योग्यता को जानते थे कि लोग स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, तो इसके पहले गुरुदेव उसको नज़रअंदाज कर लें तो अच्छा हो जाएगा। तो जब हमारे पास कच्ची मैटर आई तो हम गुरुदेव के पास गए, आप देख लीजिए जरा, तो मैंने आपको बोला है जैसे कोई भरोसा है आपके काम पे, आप कर लेना कर लेना। फिर जब मैंने प्रेस मीटर जब मेरे हाथ से लिख करके तैयार किया, जिन लोगों से आया था उस पर से जब मैंने तैयार किया, फिर मेरा विकल्प और खड़ा हो गया कि गुरुदेव को तो पढ़ाना पड़ेगा, वरना ये बात बहुत गड़बड़ वाली हो जाएगी। फिर मैं गया साहब जरा पढ़ लीजिए, फिर प्रेस मीटर, नहीं नहीं समय नहीं है आजकल मेरे पास, ऐसा करके बोले। कोई बिहार का समय था या कोई ऐसा ही वो खानिया चर्चा के कोई लोग आ गए, तो आज बात कर समय नहीं है, आपको बोला है छपा देना है, बोल दिया तो है कि छपाना है, ऐसा कर अब कर लो काम, तो फिर आगे बढ़िए। तो उस वक्त हमने थोड़ा पकड़ भी किया कि कुछ ऐसी चीज़ें इसमें आपको देखनी चाहिए, तो फिर ऐसा है छप जाने के बाद ले आना, ऐसी सूचना दी छपा देना और छप जाने के बाद ले आना। तो जब छप गया तो हमने पहले जो 4-5 किताब बाइंडिंग करने को दिया, उस वक्त तो रमेश भाई को आज से गुरुदेव को समर्पण करने का बात, गुरुदेव के कर कमर में भी रखे थे, तो उनको बुलाए थे, तो उनका कोई टेलीग्राम आ गया कि 15 दिन ले लिया, कुछ काम आ गया 15 दिन और लेट कर लिया। तो विरोध इस 15 दिन में इतना कड़ा विरोध हो गया, इतना कड़ा विरोध हो गया, बहुत विरोध हो गया। गुरुदेव को लेके आए, गुरुदेव ने उतनी प्रशंसा किया, उतनी प्रशंसा किया, एक जीवन वृत्तांत पढ़ कर करके पहले दिन से ही प्रशंसा चालू कर दिया, पहले 15 मिनट देखा और प्रशंसा चालू कर दिया, और सुबह वही प्रशंसा करे, दोपहर को इनकी प्रशंसा करे, शाम को भी इनकी प्रशंसा करे, सारे दिन सुबह ने जी की प्रशंसा चालू कर दिया। लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, क्या होता है कि जब जब भी ऐसा सर्कल में पुराने लोग पीछे रह जाते हैं, कोई नया लोग आगे हो जाता है, तो ये परिस्थिति बन भी जाती है, तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसे बन सकता है, हम 30-30 साल से यहाँ अड्डा लगा करके बैठे हुए, हमको सम्यक दर्शन नहीं होता है, दृढ़दृष्टि नहीं होती, और इसको दृढ़दृष्टि हो गया एक दिन में, कैसे हो सके, एक दिन में हो गया क्या, हो सकता है क्या, ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, विरोध किया, बहुत विरोध किया। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि यही परम सत्य है, फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया, कभी ये किताब बिक्री विभाग में नहीं बिकेगी, मेरे हाथ से जो पात्र है उसको ही दूंगा, दूसरे को नहीं मिलेगी, तो एक एक को चुन चुन करके देते थे।
कभी कभी विरोध अच्छे के लिए होता है,
वो तो ठीक है, वो सभी भगवान की प्रसादी समझो आप, प्रतिकूलता नहीं समझ करके उसको भगवान की प्रसादी समझो। यथार्थ में मैं 22 नंबर का पत्र का कुछ अंश पढ़ता हूँ इसके संदर्भ में कि यथार्थ में तो उक्त अस्तित्वपने की अखंड दृष्टि के बल पर, उक्त अस्तित्वपने में त्रिकाली में ही मेरा अस्तित्व है, एक समय की पर्याय में नहीं, दृष्टि का विषय वहाँ समाप्त होता है। तो यथार्थ में तो उक्त अस्तित्वपने की अखंड दृष्टि के बल पर पर्यायों का क्रम सहज ही अखंड की ओर बढ़ता रहता है। ऐसी दृष्टि होने से, इस दृष्टि के वशात ही सभी पर्यायों का क्रम सहज ही अखंड स्वभाव की ओर बढ़ता रहता है, क्योंकि ये दृष्टि लीड करती है सभी पर्यायों को। पुरुषार्थ आदि की इन पर्यायों में कोई उलटफेर करना नहीं पड़ता, उन पुरुषार्थ करके पर्याय को ऐसा कर दे, पर्याय को ऐसा कर दे, ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता है। कारण, कारण क्यों है, इसका कारण क्या है कि पर्याय में तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, जो मेरे दृष्टि का विषय है, जो मैं हूं, दृष्टि का विषय मैंने जो मैं हूं, मेरा अस्तित्व तो पर्याय में है ही नहीं कि मैं उसमें कुछ कर सकूं। जैसे पुद्गल में मेरा अस्तित्व नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे एक समय के पर्याय में मेरा अस्तित्व नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये दृष्टि का विषय। जबकि ज्ञान के, ज्ञान का विषय ऐसा नहीं है, ज्ञान का विषय द्रव गुण पर्याय सहित समेत जो पूरा द्रव है, प्रमाण का विषय जिसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय आ जाती है, वो उसको अस्तित्व रूप में स्वीकार करता है, वो पूरा अस्तित्व को ग्रहण करता है, जबकि दृष्टि नहीं करती। ये जो दोनों गुण का परिणमन है अस्तित्व ग्रहण करने का, उसमें ये अंतर है, फिर भी इसमें विरोध नहीं है, वो अविरोध रूप से दोनों परिणमन करते ही रहते हैं, परिणमते ही रहते हैं, विरोध नहीं होता है। और आगम में और ज्ञानियों के वचन में दृष्टि प्रधान भी बात आती है, ज्ञान प्रधान भी आती है, जिसको सही समझ नहीं होती है तो और उलझन में पड़ते हैं, ये बात तो पटाख होती है, बात कैसे करते हैं समझ में नहीं आ रही है। जैसे कृपाणु देव का आपको अवसर ले ले, मैं अपन तो उसमें तो सब भावना पर्यायों की है, तो मैं ऐसा मुनि कब बनूंगा, मेरा सप्तम गुण स्थान कैसे आएगा, पूर्वकरण अष्टम गुण स्थान कैसे आएगा, क्षायिक श्रेणी चढ़ करके मैं 12वें गुण स्थान में क्षायिक भाव में कैसे आऊँगा, क्षायिक चारित्र में कैसे आऊँगा, केवल ज्ञान में आ जाऊँगा, ऐसा मैं मुझे कब होगा। सिद्ध पद तक की जो भावना है वो भाई है कि अब तो मेरा मनोरथ है, मेरा भेजा नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन मेरा मनोरथ तो वही है, सभी भावनाएं। बीच में क्या बात आई, भव मोक्ष पन शुद्ध वर्ते संभाव, तो भव को या संसार को, मोक्ष को तो संसार का अभाव को, हमको दोनों के प्रति एक सा भाव, इसी का नाम संभाव है। वो बात कहाँ से आई, कैसे आई, एक ओर से आप भावना पाते हैं कि मेरा मनोरथ है ऊपर जाने का, सिद्ध पद का, दूसरे बीच में आप ये बोल देते हो भव मोक्ष मेरे तो संभाव है, भव हो या मोक्ष हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो तीन काल में जो होश हूँ वर्तमान में ऐसा ही हूँ, हर काल में ऐसा ही हूँ। तो जो दृढ़ दृष्टि नहीं होती उसको समाधान नहीं होगा, भव मोक्ष में संभाव कैसे, जीवन मरण में संभाव ले लो आप, शत्रु मित्र में संभाव ले लो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन भव मोक्ष में संभाव कैसे आ सकता है, ये बात तो विचित्र लगती है, क्योंकि अध्यात्म का विषय मोक्ष है, जैसे अध्यात्म का विषय त्रिकाली शुद्धात्मा है, वैसे ही अध्यात्म का विषय सम्यक दर्शन के लेकर के मोक्ष तक के पर्याय भी अध्यात्म का ही विषय है। ये बात जो दृढ़ दृष्टि की है, ये सुनना कठिन है, पचाना तो इससे भी कठिन है, ऐसी बात है। और दृढ़ दृष्टि वो एक इतनी जबरदस्त दृष्टि है कि पूरा त्रिकाली परमात्मा को पचा लेती है। चतुर्थ गुण स्थान में जिसको ये परमात्मा मिल जाता है, अपनी दृष्टि से दृष्टि में आ जाता है, वो इतना पचाता है, उसको पचाता है कि वो भाव में अटपटी दशा से वर्तता है, उसको कुछ गर्व गौरव बताई नहीं कि मुझे परमात्मा मिल गया है, अपना निधान मिल गया है, फिर भी वो किसी को उसको पता नहीं चला, चलना चला नहीं देता। तो 213वां जो पत्र है उसी पर ही लिखा गया है कि देखो, हमको तो भगवान से भी ज़्यादा बहुमान इसलिए आता है कि भगवान ने तो अपना वैभव खुला कर दिया है, उसने छिपा के रखा। वैभव तो दोनों के पास एक साइड है, एक दिखावा करता है, एक दिखाने को देता नहीं है। तो हमको लगता है कि वो आपसे भी ज़्यादा सरल है, ऐसा करके लिखा है कि परमात्मा बुरा मत लगाना, ये तो आपसे भी थोड़ा ज़्यादा सरल है, इसलिए तो आपसे थोड़ा अधिक भक्ति कर लें तो आप बुरा मत मानिएगा।
आप जिनके वश हुए,
आप जिनके वश हुए हैं, इनकी भक्ति मैं करता हूँ। आपको तो वश करने वाला तो वो है, आपको वश कर लिया है तो मैं तो इसकी भक्ति करूँगा, ऐसा करके बहुत कलम छेड़ी। तो ये बात द्रव दृष्टि वेदांत में भी क्या है, सांख्य योग है, वो सम्यक दर्शन के विपर्यास में से निकला हुआ दर्शन है। सांख्य योग है ना, वेदांत में बहुत से मतभेद हैं, विभिन्न संप्रदाय चलते हैं, पिता संप्रदाय उसमें सांख्य योग है, वो सम्यक दर्शन का विषयभूत जो त्रिकाली आत्मा है, उस विषय का आभास में से उत्पन्न हुआ एक अन्य मत है। तो वो तो आत्मा को त्रिकाली शुद्ध ही मानते हैं, वो पर्याय को स्वीकार ही नहीं करते, जैसे दृढ़ दृष्टि पर्याय का स्वीकार नहीं करती है, इसलिए, जबकि सम्यक ज्ञानी का ज्ञान पर्याय का स्वीकार करता है, तो वो विषय उनके पास नहीं है। उन्होंने वही बात पकड़ी है दिल्ली धनी में कुछ लोगों ने, तो शाही कांत कर लिया, जबकि दृष्टि एकांत सम्यक है। बात थोड़ी विरोध जैसी लगे लेकिन है नहीं, और ये नहीं है वो तो कैसे नहीं है, ये एक परिणाम का विषय है, बौद्धिक स्तर का विषय में कभी इसका समाधान होना बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि एक का अस्तित्व तो इधर समाप्त तो होता है, दूसरे का अस्तित्व तो उधर समाप्त तो नहीं होता है, दोनों एक ही पदार्थ के गुण हैं और एक ही पदार्थ का गुण के परिणाम है, और दोनों शुद्ध हैं, दोनों यथा योग्य, दोनों बराबर हैं, ऐसी बात। ये वेदांत के विद्वान है ना, इसलिए लिखते हैं कि यद्यपि यथा योग्य उपशम भाव को प्राप्त आत्मा संसार और मोक्ष में संवृत्ति वाला होता है, उसको संसार और मोक्ष में विषम वृत्ति मिल जाती है, ऐसी वृत्ति हो जाती है, तो उसको जो समाधान आता है, कहीं भी पर्याय में ऐसा समाधान आता ही नहीं। दृढ़ दृष्टि होने से उसके ज्ञान में प्रधानता द्रव्य की रहती है। अच्छा, वो बात एक रह गई कि ज्ञान जब द्रव्य गुण पर्याय तीनों लेकर के पूरा पदार्थ में अस्तित्व को स्वीकार करता है, फिर भी ज्ञान का जो मुख्यता गौणता करने का जो परिणमन का प्रकार है छद्मस्थ अवस्था में, उसमें मुख्यता जो दृष्टि का विषय है उसकी रहती है, लक्ष्य भी उसका ही रहता है, और उसी कारण से उसका पुरुषार्थ और जोर भी उसी पर जाता है। और दूसरे जो पर्याय उसको गुण भेद को जो स्वीकार करता है वो गुण रह जाता है, इसी कारण से कहा जाता है कि दृष्टि त्रिकाली की है, इसलिए उतना अपेक्षा रख करके ज्ञान का परिणाम है। मुख्य गुण वाली जो स्थिति है वो तो छन्नमस्त अवस्था में अनिवार्य सबों की होती है, कि कुछ को मुख्य करता है, कुछ को गौण करता है। दो बात जानते हुए एक को मुख्य करता है, एक को गौण करता है।